الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. پچھلے کچھ عرصے سے مقامات اشرا پہ گفتگو ہو رہی تھی، آج کی اس مجلس میں ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو شروع کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ ٹاپک ہے نسبت مع اللہ، اللہ سے تعلق. نسبت کہتے ہیں تعلق کو، اور نسبت مع اللہ اللہ سے تعلق کو کہتے ہیں. عام طور پہ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، مشائخ کی یا تصوف کی زبان میں اسے صاحب نسبت کہتے ہیں. اللہ والوں کو کئی مرتبہ عام زبان میں اللہ والا کہا جاتا ہے، علماء کی زبان میں یا مشائخ کی زبان میں اس کو صاحب نسبت کہا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مشائخ کے جو طریقے ہیں نا، چاہے وہ سلسلہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، ان تمام سلاسل کا جو مقصد ہے وہ ایک خاص کیفیت کا حاصل کرنا ہے، اور اس کیفیت کو نسبت کہتے ہیں. یعنی ایک اللہ سے خاص تعلق حاصل ہو جانا. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ نسبت کے جو معنی ہے وہ اللہ تعالی سے ایک خاص تعلق ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اس کے دو صفات ہیں صاحب نسبت کی. ایک یہ کہ اس کو اطاعت دائمہ حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کی زندگی میں گناہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، اور دوسرا اس کو غالب ذکر نصیب ہو جائے گا کہ اس کی زندگی کا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرے گا. تو عام جیسے لوگ، ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، ان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی پاسبل ہے کہ زندگی کا اکثر وقت اللہ کی یاد میں گزرے اور اکثر گناہوں سے پرہیز نصیب ہو جائے. تو مشائخ نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ انسان کی طبیعت کا حصہ یہ چیز بن جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اور اس کی طبیعت کا حصہ یہ بن جائے کہ وہ گناہ سے پاک ہو جائے. چنانچہ تین مثالیں مشائخ نے دی ہیں، اور وہ تین مثالیں، ان تین مثالوں سے واضح ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اس دنیا میں ہیں جو ہم اکوائر کرتے ہیں، یعنی ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہوتی وہ چیزیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو جب اور دنیاوی چیزیں وجود کا حصہ بن سکتی ہیں، تو دائمی ذکر اور دائمی اطاعت اللہ کی جو ہے وہ بھی انسان کے وجود کا حصہ بن سکتی ہے. چنانچہ ایک مثال تو مشائخ نے نمازی اور بے نمازی کی دی، کہ کچھ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بار بار نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی باقی چار تو نمازیں ہو جاتی ہیں، فجر میں بہت غفلت ہوتی ہے. कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी फजर और ईशा में गफलत होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी जब जॉब पे होता हूँ तो बड़ी गफलत होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी मेरे लिए तो नमाज पढ़ने में दिल ही नहीं लगता, दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपने काम छोड़ के और नमाज पढ़ने मस्जिद जाऊं। तो बहुत सारे लोगों के लिए नमाज पढ़ना मुश्किल, और कई मरतबा उन्हीं के घर के अंदर लोग होते हैं, उनके लिए नमाज छोड़ना मुश्किल हो जाती है, इतनी नमाज की पाबंदी हासिल होती है। या अगर उनको जबरदस्ती भी रोका जाए तो नहीं रुकेंगे वो नमाज से, ऐसी पक्की तबीयत बन जाती है। एक ही घर के रहने वाले दो लोग, इसका मतलब यह है कि नमाज की आदत जो है वो वजूद का हिस्सा बन गई ना, एक चीज नहीं थी पहले और फिर वो हासिल हो गई। हमारे एक जानने वाले बुजुर्ग, उनके बारे में बल्कि उन्होंने खुद ही ये मामला और उनके एक जानने वाले ने ये वाक्य सुनाया कि नमाज पढ़ने की तबीयत थी, नमाज पढ़ने की आदत थी, बस में सफर कर रहे थे। अब सफर लंबा था, नमाज का वक्त आया और नमाज के वक्त पूरे वक्त में ड्राइवर ने बस रोकी ही नहीं, ताकि नमाज का वक्त खत्म होने का वक्त आ गया। अब ये इंतजार में है कि ड्राइवर बस रोकेगा तो नमाज पढ़ेंगे। पूरी बस में कोई एहतजाज नहीं कर रहा था, ये थोड़े से परेशान थे। तो जब वक्त उनको इतना महसूस हुआ कि बहुत तंग हो गया है कि अब मुझे नमाज पढ़ने में भी तंगी होगी, जल्दी जल्दी पढ़नी पड़ेगी अगर ये अब भी रोकेगा तो उन्होंने जाके ड्राइवर से बात की कि भाई बस रोको, नमाज का वक्त निकल रहा है, मेरी नमाज निकल जाएगी। ड्राइवर ने भी देखा कि जी सारे लोग, कोई भी बस रोकने का नहीं कह रहा, ये एक साहब रोकने का कह रहे हैं। ड्राइवर ने कहा भाई कि मालकों का हुक्म है कि नहीं रोकनी है, बस वक्त पे पहुंचाना है। तो ये इनकी बहुत मिन्नतें करते रहे, जब उन्होंने कहा कि जी मालकों का हुक्म है कि नहीं रोकनी है बस, तो ये गुस्से में आ, उन्होंने कहा कि अगर तेरे मालिक का हुक्म है कि बस नहीं रोकनी, तो मेरे मालिक का हुक्म है कि नमाज फर्ज है। अब वो इस अंदाज से उन्होंने ये कहा ना कि बस में बैठे हुए पैसेंजर जो हैं वो भी परेशान हो गए। आखिर को पैसेंजर ने ड्राइवर से कहा कि जी मौलाना साहब को नमाज पढ़ने गए, तो ड्राइवर ने बस रोक ली। तो देखिए, जिन लोगों की तबीयत बनी हुई होती है नमाज की, उनको कोई चीज नमाज से नहीं रोक सकती। तो कई मरतबा इंसान की किसी चीज की तबीयत नहीं होती, वक्त के साथ साथ वो उस तबीयत को अक्वायर करता है। तो मशायख ने फरमाया कि इसी तरह ये जो निस्बत है ना कि अल्लाह का जिक्र गालिब हो जाए, गुनाह से परहेज इंसान की तबीयत का हिस्सा बन जाए, ये भी एक ऐसी चीज है जो हासिल की जा सकती है। इसी तरह मशायख ने फरमाया कि कुछ लोगों को अपनी खुराक में कुछ खास चीजों की जरूरत होती है जो उनके वजूद का हिस्सा बन जाता है। जैसे कुछ लोगों को चाय की जरूरत होती है, कि चाय नहीं मिलेगी तो उनकी तबीयत जो है उसमें सुकून ही नहीं आएगा। कुछ लोगों को कहवा पीने की तबीयत बन जाती है। तो हालांकि ये चीजें उनकी तबीयत में पहले इब्तदा से नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये वजूद का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनकी तबीयत का हिस्सा जो है ना वो सफाई पसंदी होती है, नफासत होती है, हर चीज साफ करके हर चीज तरतीब वार पड़ी होनी चाहिए। तो ये भी एक ऐसी चीज है जो इंसान एक्वायर करता है ना। हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसा कश दिया है, पूरी दुनिया को इस तरह से देख सकता हूँ जैसे हाथ पे रखे हुए चावल के दाने को देखता है इंसान, और इस अंदाज से पूरी दुनिया को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह जैसा बुजुर्ग इस वक्त दुनिया में कोई नहीं। तो ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि मिर्जा मजहर जाने जाना इतने बड़े बुजुर्ग थे। और हजरत मिर्जा साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर था कि बहुत ही निफासत पसंद थे, बहुत ही ज्यादा तबीयत के अंदर निफासत थी। चुनांचे हजरत के एक मुरीद ने हजरत को सर्दियों में एक लिहाफ ला के दिया हदीये के तौर पे, और बहुत ही इंसिस्ट किया कि हजरत आपने इसको इस्तेमाल फरमाना। अब हजरत की तबीयत जो थी ना बहुत ही निफासत वाली थी, मगर क्योंकि इतनी मोहब्बत से वो लेके आए थे तो हजरत ने उस मुरीद साहब का जो है वो लिहाफ जो था, रजाई जो थी, वो रात को हजरत ने इस्तेमाल फरमाई सर्दियों की रात। अगले दिन उसने आके कहा कि हजरत कैसे लगे आपको मेरा हदिया? हजरत ने कहा कि सर्दी तो उसने रोक दी, मगर जो उसकी सिलाई जो सीधी नहीं थी, टेढ़ी थी, उसने पूरी रात मेरे सर में दर्द करके रखा। अल्लाह अकबर। तो देखिए कैसी निफासत। एक मरतबा हजरत को सुबह सुबह बहुत ही फजर के वक्त हजरत ने अपने खादिम को बुलाया और कहा कि बस पूरी रात तकलीफ में रहा हूं, परेशानी रही है, रात सो न सका, ऐसा लगता है कि बिस्तर में कोई चीज नीचे जरूर थी, किसी ने कोई चीज रख दी है जिसकी वजह से रात नींद नहीं सही आई। खादिम ने पूरा जो है वो बिस्तरा उठाया और मैट्रेस या जो भी था गद्दा वो उठाया, नीचे देखा तो जैसे एक चावल के दाने की नुमा कोई चीज पड़ी हुई थी, उसकी वजह से तबीयत के अंदर बोझ महसूस हो रहा था। अल्लाह, तो कुछ तबीयतें बड़ी नफीस होती हैं और इब्तदाई तौर पर ऐसी नहीं होती है, बस इंसान वो चीजें एक्वायर कर लेता है। किताबों में लिखा है कि हजरत का इंतकाल किसी ने हजरत को शहीद किया, नहीं नहीं उस जमाने में बंदूक निकली थी और बंदूक की गोली निकली थी, तो हजरत को किसी ने बंदूक की गोली से फायर किया। आजकल की सोफिस्टिकेटेड नहीं थी वो गोली की आवाज भी बहुत होती थी, उसकी स्पीड भी कम होती थी, उसके अंदर बू भी होती थी, मतलब एक अच्छी खासी वो मतलब नया नया अंग्रेजों का दौर था। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तो मुगल बादशाहों के जमाने के बुजुर्ग हैं, तो यूं समझें कि बहुत पुरानी 200-250 साल पुरानी बात, नई नई बंदूक की निकली थी बिल्कुल, और उस बंदूक से किसी ने हजरत पे फायर किया और कुछ अरसे तक हजरत हयात रहे और फिर आप उस जख्म की ताब ना ला सके और इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अल्लाह ताला ने शहादत का दर्जा दिया। तो जब हजरत को उसने उस शख्स ने जब फायर किया और गोली मारी, तो फौरी तौर पे जो है वो दवाखाने लेके गए और मरहम पट्टी की गई और फिर हजरत होश में भी तशरीफ ले आए, कुछ अरसे तक हयात रहे। तो जब कुछ तबीयत थोड़ी संभली तो करीबी एक साथी थे, उन्होंने आके पूछा कि हजरत कैसी तबीयत है आपकी? हजरत ने फरमाया, सच्ची बात बताओ, जो गोली लगी उसकी वजह से जो जख्म हुआ उससे इतनी तकलीफ नहीं हुई, जो बारूद में से बू आ रही थी ना उससे तकलीफ ज्यादा हुई। अल्लाह, यानी गोली से लगने वाला जख्म से तकलीफ इतनी नहीं हुई और जो बारूद में से बू आ रही थी ना, उससे तकलीफ ज्यादा हुई। ऐसी तबीयत के अंदर निफास शक्ति। तो कुछ लोगों की तबीयत का हिस्सा ये निफासत बन जाती है। तो मशायख ने आर्ग्यू किया कि अगर किसी शख्स की तबीयत का हिस्सा नमाज पढ़ना बन सकती है, किसी शख्स की तबीयत का हिस्सा चाय और इस तरह की चीजें बन सकती हैं कि उसके बगैर गुजारा नहीं, वजूद का हिस्सा बन जाती है, या किसी की तबीयत का हिस्सा सफाई पसंद या निफासत पसंदी बन सकती है, तो इसी तरह ये जो निस्बत है याद इलाही और गुनाहों से बचना, ये भी इंसान की तबीयत का हिस्सा बन सकती है। तो निस्बत का हासिल कर लेना ये कोई इम्पॉसिबल गोल नहीं है कि इंसान की जिंदगी में अल्लाह की याद का गलबा हो और गुनाह से परहेज हो। हाँ, उसके लिए रास्ते मुतय्यन मशायख ने किए हैं, और वो रास्ते और वो एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए जैसे एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इसी तरह इस रास्ते की भी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है। एक आखिरी बात कह के आज की बात मुकम्मल करेंगे, इस टॉपिक को इंशाल्लाह पूरी तरह से मुकम्मल किया जाएगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल नकल यहाँ करना है। हजरत ने फरमाया है कि निस्बत की हकीकत ये है कि जो साहिब निस्बत होता है उसको आलम बाला, यानी इसको आसमानों से आलम, बड़े वाले आलम जो है ना, उससे अनवारात अखज करने का मलका पैदा हो जाता है। तो आलम बाला से अनवारात जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने का, उनको हासिल करने की एक्सपर्टीज हासिल हो जाती है। इस एक्सपर्टीज को हासिल करने के लिए इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के पास जाना जरूरी है, मगर ये बहुत बड़ा मकाम है, और ये दुनिया की भी आसानी और आखिरत की भी आसानी। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जान लो कि अल्लाह के औलिया वो हैं, उनके ऊपर ना कोई खौफ है ना कोई गम है। ये रास्ता बड़ा खूबसूरत और ये रास्ता बहुत ही सूदमंद है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे चलने वाला बनाए। آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين